The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله Dear viewers of Madani Channel, once again welcome to our transmission Path to Success. And there are great and countless virtues and blessings to recite Durood e Pak on the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. The beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam has said, send peace and blessings upon me, as this will be noor for you on the day of judgment. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We'll start with the beautiful topic, and our topic is very, very important nowadays, especially every single person is crying about their income and expense, because we know that fuel prices and every prices has gone up as well. So every individual, even the rich or poor, every second person is crying that what's happening, how we can control our expense and how we can increase our income. Many, many things, inshallah, we'll cover in our today's program, inshallah, azza wa jal. But a beautiful saying of the wise people, a penny saved is a penny to earn. So it's both way, earning and expense. One penny you save is mean that you're earning a penny. So inshallah, azza wa jal, we will cover income and expense, and inshallah, how we can do our budgeting, what Islam says about the income and expense, how we can budgeting in our day-to-day routine life, inshallah, so we can have a good life. And remember, in the life, one is your necessities, which one is your need, and the other one is your luxuries. We mostly focus on our luxuries, not on our needs. This is the main problem. That's why we always out of our budget, that we go towards our expensive side, and especially our luxurious life side, inshallah. But whatever our priorities, inshallah, we will focus on that. So we will have a very, very good and smooth life, inshallah. We'll start with the recitation of Holy Quran. We'll listen to the Quran, and then we'll go to our topic, inshallah. Income and expense. Very important topic, especially need of time, need of our society, and need of every house. Ye yaad rakhiyega.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاجیو آ شہنشاہ روضہ دیکھو، حاجیو آ شہنشاہ روضہ دیکھو، حاجیو آ شہنشاہ روضہ کے گا
Subhanallah, income and expenses, problem in every household. Basic needs, facilities, and luxury, they all different things. Nothing comes free in the life. Kuch bhi free mein nahi aata hai. Lekin jo basic needs hai na, wo gareebon ki bhi puri ho jati hai. Aur jo aasaishein hai, wo badshahon ki khwahishat bhi puri nahi hoti hai. Kis tarah family ko khushhal zindagi ki taraf lekar jaya jaye. A balanced life is always Islam. Guide us and always Islam جو ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے میسج دیتا ہے کہ زندگی میں بیلنس لائف ہو تو انشاءاللہ گھر بھی سکون سے ہوگا کیونکہ بندہ جب گھر میں سکون سے ہوگا نا باہر جا کے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے لیکن جب گھر سے ڈسٹرب ہوتا ہے تو باہر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو گھر کے اندر ضروری یہی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر انکم اور ایکسپنس کے حوالے سے چیزیں کنٹرول ہوں تاکہ محبتیں اور پیار جو ہے وہ گھر کے اندر قائم رہے اور زندگی بڑے سکون میں گزرے آئیے ان شاء اللہ آئی ول اسٹارٹ ود آور منیب شاہ صاحب ان شاء اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم دس از سچ اے ٹاپک which I think every single person this moment can relate to regarding income and expenses. And roughly every other household is going through this problem in this day, in this time, in this era, this moment in time as well. And majority will be looking for solutions that, okay, the prices have increased, but my income is the same, and a lot of expenditure is happening. So how do I cut down on my outgoings so therefore I can support not just myself, the family members, the kids, and anyone else who is a dependent on me. So, inshallah, hopefully, the views of Madni channel can take some valuable Madni pearls from the panel, yourself included as well. And Sayyid is mentioned that human life consists of three things: needs, facilities, and luxuries. Now, we need to determine ourselves first and foremost that what is our needs, what is our luxury, and what is our facility. Once we embed that in our minds and heart that this is my need, first I need to focus on this. After fulfilling that need, then yes, a facility or luxury that you can afford without tarnishing or without damaging the need as well, then yeah, a person can attempt that. But what happens nowadays, Sahib, is a need is there. For example, Sahib, a person needs a car from this, what's the job or a duty of a car? To get you from destination A to destination B, C, and so on. And that can be done with, I'm not saying get a really old one that hardly runs, but get an appropriate one. But why do we straight away jump to the latest models, latest reg number, all etc. like that? So this is, if you jump from a need to a luxury, your need, especially if, and then you're complaining on top that I can't fulfill the household budget is running over, I'm going to negative, overdrafts, bankruptcy, etc. You need to think down, sit down and think, where are my needs, where are my luxuries, and where are my facilities? What can I do within what I earn that's a need, and what I can do within what I earn that's a luxury or a facility as well? Since you generally heard this, that we have a very tight budget. You've heard this saying that we have a very tight budget, or I'm over the budget, etc. Whatever the term, whatever they use. But inshallah, this term will not exist if you manage your budget properly. If you manage everything properly, keep your needs in check, keep your facilities and luxuries in check, inshallah, everything will be fine. And spend according to Islam as well. And inshallah, how can you do that? We'll come and touch upon that as well.
Quran ne ek hi آیت کے اندر نا مطلب کمال کی چیزیں جو ہے نا اس کے اندر ضم ہو گئی ہے. کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. مطلب اگر یہ اصول اگر اپنی زندگی میں کھانے میں پینے میں اٹھنے میں اینی تھنگ اگر یہ اصول آپ نافذ کر لیں نا تو آپ کی زندگی بہت ایزی ہو جائے گی. کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو, اصل میں پرابلم حد سے بڑھنے کا ہے. کھانا بھوک ہے نا, ہو گئے تین ڈشے سامنے ہونی چاہیے. روٹی ایک سالن نہیں دو سالن ہونے چاہیے, پھر ساتھ میں کباب بھی چاہیے, پھر ساتھ میں چٹنی بھی ہونی چاہیے. اچھا اس کے بعد ڈرنک بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی ڈرنک, تو اس کے بعد پھر چائے بھی ہونی چاہیے, پھر تھوڑا بہت میٹھا بھی ہونا چاہیے. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت پیٹ بھرنا تھی, ایک روٹی کی ضرورت تھی اور سالن تھا. لیکن اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں یہ ضروریات میں سے نہیں, یہ سہولیات میں سے ہے, یہ لگژریز کے اندر آ جاتی ہیں. اگر ہم اپنے ہر کھانے پہ غور کر رہے ہوں, ہر میل پر, ہر اٹھنے پر, ہر آنے پہ جانے پہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی کے اندر واقعی درمیانی وہ جو اسلام نے بتایا نا کہ حد سے نہ بڑھو, وہ بڑھ گیا ہے, جس کی وجہ سے آج ہماری لائف ڈیفیکلٹی میں آ گئی, بہت پرابلم ہے. اگر واقعی اس اصول پہ طارق بھائی مطلب بڑے کمال کا یہ نا, بیماریاں بھی پیدا اسی لیے ہوتی بندہ زیادہ کھاتا ہے اور مطلب وزن بھی اسی لیے بڑھتا ہے, پھر ہوتا یہ کہ پھر وہ جم کے پیسے الگ دیتا ہے. بھائی پہلے ہی کم کھاتے ہیں, ایک تو کھانے میں پیسہ ضائع, اوپر سے پھر ہضم کرنے پر بھی پیسہ ضائع, یعنی آپ دیکھیں پھر کہہ رہے کہ میں آؤٹ آف بجٹ ہو گیا ہوں. کیا فرماتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ یہ جملہ بڑا جو نا ہمیں ایک دلاسہ دینے والا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی فل پیٹ بھر کے نہیں کھایا, اور ہم جیسا آپ نے فرمایا بالکل اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں کھانے کے اوپر. بلکہ وہ ہے نا ایک اور روایت میں ذکر کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفا کے بھوک کے تین حصے کر لو, ایک کھانے کا, ایک پینے کا اور ایک ہوا کا. لیکن ہماری جو حالت ہے وہ یہی ہے کہ مختلف ڈشز کھاتے ہیں اور اس طرح سے اسراف کرتے ہیں بعض اوقات, لیکن ہر صورت میں اسراف نہیں ہوتا, ٹھیک ہے بعض اوقات جائز ہوتا ہے, مباح ہوتا ہے, لیکن سم ٹائمز ہم کھانے میں بھی اسراف کرتے ہیں, تو اس پر جو ہے ضرور غور کرنا چاہیے.
اصل میں فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کا بھائی قرار دیا
جی, یہ بیان کیا گیا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربی کفورا. ترجمہ کنزل عرفان, بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے.
اللہ,
تو فضول خرچی کرنا یہ جو ہے نا شیطان کے بھائی ہونے کی سمجھنے کی علامت ہے, اس وجہ سے یہاں پر ذکر کیا گیا. اور اسی طرح سے دیکھیں جہاں تک اس یہ جو ٹاپک کے جیسے آج ہم نے جو ذکر کیا ہے انکم اور ایکسپنسز, اب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں, آیات طیبات کو دیکھیں, احادیث طیبات کو دیکھیں, تو آپ کو کہیں پر بھی جو ہے یہ نظر نہیں آئے گا کہ بھائی کھانے سے یا انکم کرنے سے کمانے سے منع کیا گیا, بلکہ کمانے کی اجازت ہے, بلکہ کہا گیا کہ بھائی کماؤ, یہ بھی بین کیا گیا ہے. جیسے کہ سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو, اللہ کا فضل تلاش کرو. اس کی تفسیر میں یہاں پر یہ جو لفظ ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کہ اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی روزی تلاش کرو, تو روزی تلاش کرنا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. بات یہ کہ ہاں اگر ہمارا سورس آف انکم غلط ہے یہ ایک الگ میٹر ہو جائے گا. تو انکم کا حاصل ہونا کمانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, صرف یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اکارڈنگ ٹو شریعت درست ہے نہیں. اور اسی طرح سے لائک وائز ایکسپنسز آپ کریں, کوئی حرج نہیں, جو درست ایکسپنسز وہ کریں. جہاں پر دیکھیں اسراف کی جب ہم ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ التجاوز عن الحد, کہ جب بندہ لمٹ کو کراس کر دینا یہ اسراف ہے, بس اس سے بچنا چاہیے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں.
ماشاءاللہ رضوان بھائی, ویلکم ٹو آور پروگرام. ماشاءاللہ
جسٹ بیفور وی گو انٹو دیٹ ٹاپک بیکاز وی کین ٹاک آن اٹ فار آورز اینڈ آورز, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو مینشن ا لٹل بٹ اباؤٹ سسٹیننس. اینڈ اللہ المائٹی نو ڈاؤٹ ہیز بلیسڈ ایچ انڈیویجول ود ڈیفرنٹ لیولز اف سسٹیننس. There's some that are poor, there's some that, as you said, are in the middle, neither poor nor rich, and there's some that are rich. And no doubt there's immense hikmah, wisdom, why Allah Ta'ala has given sustenance and the amount of sustenance to each person. We have a certain amount of salary covering our expenses, we've got a good car, we're thinking already about the next one, we want to earn more. So it's about being content. Now there's four types of people that we can think about. one who earns a lot and spends lavishly. So he spends extravagantly. Now, these type of people can get into problems later on. The second type of person is the one who earns good money but spends wisely. Okay, he earns good money as well, but he spends it wisely. He thinks about it. The third type is that he earns a little bit. He only earns a little bit, but he still spends wisely. And the fourth person is those who earn a small amount but spend lavishly. Now, those people get into a lot of problems as well because they're spending above their means. Now, where we want to be is the two middle categories. Whether we're earning a lot or whether we're earning a little bit, we want to spend wisely. And that's what we're going to try and talk about in today's program, is what is spending wisely. Nobody's saying that we shouldn't be earning. Nobody's saying that we shouldn't be spending good on eating, on dressing. It's where it becomes, and we've said it a few times, beyond our means.
Yes.
So beyond our earnings. So when we fall into that last amount or the first amount, where we're earning good or we're earning little, but we're spending so lavishly that we're putting ourselves into problems. That's where we don't want to be. So how do we do that? That's what we need to talk about, the methods, and that's when we're going to go into budgeting, inshallah.
MashaAllah. Chale, ye waqai halal kamana chahiye to halal hi, haram mein to barkat hi nahi hai. To halal hi ho, halal khilayenge to inshallah bahut barkatein milengi. Jaise inhone risk ke hawale se baat ki hai, waqai risk ka zameen rabb e kareem hai, aur insaan jo hai wo pata nahi apne aap ko kya samjha hua hai. और इधर से उधर भाग रहा होता है, जबकि रब्बे करीम ने अपने जिम्मे कर्म पर लिया हुआ है. अब इसके चक्कर में हराम में पड़ जाना, गुनाहों में पड़ जाना, तो ये ठीक नहीं है. असल में ये उसी वक्त होता है. बात यही है, नेचर है इंसान की, इज अ ग्रीडी, ग्रीडीनेस इज इन नेचर. अब लेकिन वो ग्रीडीनेस गुड डीड्स की भी तो होनी चाहिए ना, या सिर्फ पैसे की होती है या खाने की होती है, इसके अलावा भी तो होनी चाहिए. अब जिस चीजों का मना है उन्हीं के अंदर आ रही है. हालांकि जो मियाना रवि इख्तियार करता है, मेरे आका अलैहि सलातो सलाम का बड़ा प्यारा फरमान है. मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कि खर्च में मियाना रवि आधी जिंदगी है. आधी जिंदगी खर्च में मियाना रवि करना, यानी दरमियाना रास्ता इख्तियार करना, यानी कमाना भी और खर्च करना भी, ये दोनों खुशहाली इस पे दारोमदार करती है. मगर इनमें कमाल किया है कि खर्च किस तरह करना है. जैसे कहते हैं ना, जबान हर कोई रखता है लेकिन कमाल वो रखता है जो संभाल रखता है. इसी तरह कमाता हर कोई है लेकिन खर्च करना जो है ना, ये कमाल की बात है. इनकम के सोर्सेस फ्यू होते हैं खाली, वन एंड टू. या तो बिजनेस की तरफ से आ रहा होगा या आप जॉब कर रहे होंगे, और इससे ज्यादा नहीं. आपका कोई घर किराए पर दिया हुआ, इससे ज्यादा इनकम के क्या सोर्सेज होंगे. लेकिन एक्सपेंस के जो सोर्सेज हैं और आपकी डायमेंशन है, वो बहुत सारी होती है. वो घर भी होती है, वो बाहर भी होती है, वो बच्चे भी होते हैं, वो दोस्त भी होते हैं, वो आपका टूर भी होता है, वो आपका बाहर निकलना भी होता है. यानी बहुत सारे एक्सपेंस के रास्ते होते हैं. असल में प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर प्रॉब्लम होता है. कंट्रोल उसी वक्त नहीं होता है जब हमारी बजटिंग नहीं होती, जब हम आउट ऑफ द लिमिट जाकर कोई काम करते हैं. इसीलिए किसी ने कहा ना, चादर देखकर पांव फैलाओ. हम क्या करते हैं, चादर पहले देखते नहीं, पहले पांव फैला देते हैं, उसके बाद कहते चादर लेकर आओ. भाई चादर पहले, चादर रखो, फिर देखो पांव कहां तक जाते हैं. दोस्ती होगी ऐसे लोगों के साथ जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं. अब मैंने महीने तक खाया उनका, अब जब मैंने एक महीने के बाद, मैंने कहा कभी तो यार शर्म तो आती है कि रोज मैं उनका खा रहा हूं, अब के मैं बिल दूं. जब बिल दिया तो मैं आउट ऑफ बजट हो गया अपने उससे. अब मैं पूरा जो है वो तीन महीने पीछे चला गया, क्योंकि मैं बजटिंग ही नहीं थी मेरी इतनी. लेकिन अब आपने रखा हुआ क्यों था ऐसे इतना, उतना आप अपने लिमिट में रहे. आपको क्या जरूरत है इस तरीके की शो ऑफ करने की, इस तरीके के रहने की. इंसान को जो अल्लाह ने दिया है ना, वो उस पर राजी रहे, दिखावे में ना पड़े. असल में हमारा जो प्रॉब्लम है, व्हाट विल पीपल से, ये जुमला सुना होगा आपने, हमने इसी ने मरवा दिया, इसी ने हमारे इनकम एक्सपेंस का सारा बजट आउट कर दिया कि व्हाट विल पीपल से. हमारी शादियां ले ले, हमारे घर के मामलात ले ले, हमारी गाड़ियां ले ले, हमारे एनीथिंग यू टेक. असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं इसमें खुश हूं या नहीं है, लोग इसमें खुश है या नहीं है. असल में यहां हमें मरवा दिया. हम अच्छे खासे किराए के घर में खुश थे, बिल्कुल सुकून. नहीं यार, उसने घर ले लिया, ओए हो, अब तो शुरू करना पड़ेगा. ओए हो, अच्छा उन्हें अब ओवर टाइम शुरू, अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही है. जबरदस्ती ओवर टाइम में लेकर घर वालों को टाइम देना भी खत्म किया, अपनी सेहत का भी बुरा हाल किया, और उसके बाद हुआ क्या कि वो जो पैसा मिला उसमें बरकत भी नहीं. तो अब ये सारी चीजें देखी जाए कि मेरी खुशी किसमें है. खुशी जो है ना इंसान की जिंदगी तवील कर देती है, और जो बंदा खुश नहीं होता उसकी जिंदगी इतनी स्ट्रेसफुल होती है वो अपनी खुद जिंदगी जो है ना वो वाले जान बना देता है। इसलिए खुश रहना सीखे जिंदगी में, और खुशी ज्यादा पैसे में नहीं है, ये याद रखिएगा, खुशी थोड़ा सा हो लेकिन बरकत वाला माल हो तो उसके अंदर मिलती है। जी मुनीम भाई,
जैसे सर, देयर आर ब्लेसिंग्स इन हैविंग लेस कंपेयर टू हैविंग मोर। नाउ आई लाइक टू गिव एन एग्जांपल, से सर, यू नो यू स्पोक ऑन वेडिंग्स एटसेट्रा, यू नो हाउ as we grow up we see weddings happen, we see a lot of things in society that impress us, and when we grow up we start to think that when it's my turn or when I'm at a certain age I want this to happen. For example, if you're getting married or looking to get married, etc., people, because the norm is that they hire out cars, they book out wedding halls, they do X, Y and Z, extravagant weddings, and they spend thousands and thousands, even more on weddings, and just on cars itself, then the cards, the wedding hall, the food included. And at the end what happens? The couple married off. At the end the father, whoever organized it, now they, bankrupt, you can say, has gone back 5-6 years, he's to earn again. As you mentioned as well, that budget is gone. So there was a wedding in Italy, and I believe you were there as well. And it was a very simple wedding, and a very simple wedding. And how the wedding happened was, the nikah, etc., happened, was in the masjid.
Alhamdulillah.
In the masjid. I asked, because one of the individuals I got married was my class fellow. I asked him, because we're close, approximately how much was the kharcha on the wedding? He goes, apart from the clothes that we wore and the food that we gave,
Allah,
everything was free.
Yeah. Subhanallah.
It was a simple wedding, because the whole job is ijab al-qubul done, finished. But why do we have to step out of bounds to go and live that lavish life that, you know, we don't have to live simple. Now Allah, look at the life of the Prophet Ali Salatu Wasalam, was a simple life. As Rizwan was mentioning and yourself mentioned as well, acquiring wealth. First when you check, you know, if it's halal, haram wealth, and how do we spend it? Do we waste it? Because you mentioned in the narration that the Prophet Ali Salatu Wasalam has mentioned that the feet of a servant will not move on the Day of Judgment until he is asked about four matters. Number one, his body and how he used it. Number two, his lifetime and how he exhausted it. Number three, his wealth and how he acquired it and how he spent it. Ila akhiri, there's a lengthy narration. Number three was that how he acquired it and how he spent it. So you will not be able to move on the Day of Judgment until you answer this question. Now we should, and the viewers of Madni channel should ponder that the amount of wealth we have, how did we acquire that and how we spent it? Because this is about income and expenses. Now spent it. Now did we spend it uselessly? Did we waste our wealth? Whereas we could get one thing but we wanted something extravagant. All this will come under this. So therefore, according to the nation, you know, and we should really ponder regarding our income and expenses. This is the best way to, one of the best ways to have a family budget is, for example, if there's five people living, if it's too young, it's different, and you all are adults, then separate each task. For example, shopping, one person, bills, another person, and the house rent, etc., one person. So if you spread the cost out to each brother or sibling that you have, then your life will become easy. But if you try to take control of everything, now, no, I want the house, house harcha, or I want the house in my name, so I can say I own a house, and all that. When that happens, a lot of things will break apart. Spread, you know, for example, say, if you're carrying something heavy, if you're carrying it for a long distance, you'll eventually collapse because you're heavy. But once you share that burden or that weight with someone, when two people carry something, it becomes easier for you.
Safe
when three people carry something, it becomes much easier for you. When four people carry, you maybe can lift something with a finger each. So this is why share your stuff with family members. And like that, the burden or anything else, that it will lessen in your household. And then inshallah, you see a blessing in the
family. Sharing is caring.
Yes,
yes. But here, I will do a little bit. You have said that it should be divided. But one thing, मेरी मोटी शक्ल में आता है, आप घर में जो होते हैं देना चाहिए। अगर एक्सपेंस हर कोई बंदा कर रहा होगा तो शायद घर का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अगर घर को कामयाब, प्रैक्टिकली बात है, अगर घर को कामयाब बनाना तो एक घर के फर्दे वाहिद के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए।
और उसने तकसीम कारी की हो, उसने देना कि बेटा आपने बिल देना है, दूसरे को आपने देना है, लेकिन हेड एक हो। अगर सारे हेड होंगे तो फिर बिग हेड होंगे, और फिर बिग हेड होंगे तो फिर मामला खराब होता है। तो घर का जो बड़ा होता है ये उसका काम है कि घर को एक्सपेंस, क्योंकि देखिए घर में पांच छह लोग रहते हैं, उन पांच छह लोगों अगर हर कोई बोलेगा ठीक है जी मैं ये एक्सपेंस करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो भी प्रॉब्लम आएगा। जो उन्होंने बात की ना सब में तकसीम हो, कोई ये होता है ना कुछ बाप कमाई खाने के आदि हो जाते हैं, नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं करूंगा मैं बैठा रहूंगा, किसी का भाई बाहर है तो भाई बाहर से पैसे आ रहे हैं तो ये अपने मजे से रह रहा, कहता है जी सानू की है, तो ये नहीं है। सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन घर में एक हेड होना चाहिए, वरना सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा पूरा। कि उसको पता हो कि बजटिंग क्या है, आप महीने से पहले अपनी बजटिंग कर ले कि ये मेरा बजट है, इतने देने इतने देने इतने इसको देने, इसी तरीके से निकलना है। अगर हर बंदा खुद से एक्सपेंस कर रहा होगा तो कभी भी सिस्टम नहीं चलेगा। घर देखे गाड़ी भी एक के हाथ में दी जाती है, अगर दो के हाथ में गाड़ी दी जाएंगे तो एक हैंडल इधर करेगा एक हैंडल इधर करेगा। ये गाड़ी भी इसी तरह ही है, गाड़ी की तरह ये घर का जो निजाम है, एक को और मर्द को अफसर बनाया है कुरान पाक में, ठीक है, मर्द को अफसर बनाया गया जो इस्लाम ने तालीम दी उसकी तरफ। हाँ आप घर वालों की भी तकसीम कर रही हो, उन्होंने क्या लेना है क्या नहीं लेना, फिर बेटे की भी जिम्मेदारी हो, लेकिन घर का एक अफसर हो जो सिस्टम को लेकर चले। जैसे आप गवर्नमेंट लेवल पे ले लें, आप इदारती जितने भी हैं इनको ले लें, आप गवर्नमेंट बगैर गवर्नमेंट भी बजट के नहीं चलती। आपने देखा है कोई, जब कोई भी इंडस्ट्री बगैर बजट के नहीं चलती है, उसके इनकम एक्सपेंस क्या है, या कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी ले या आप लोकल बॉडी ले या प्राइवेट बॉडी ले, जब वो नहीं चल सकती तो घर जो अमन का गहवारा होगा तो हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। अगर उसके अंदर भी कोई एक अथॉरिटी नहीं होगा और उसके भी इनकम और एक्सपेंस के आपको जरिए ही नहीं पता होंगे, तो फिर जिसकी जो मर्जी आएगी वो खा रहा होगा, जिसकी जो मर्जी वो ला रहा होगा, बच्चा घर में बैठकर ऑर्डर कर रहा होगा उसके लिए पिज्जा आ रहा होगा, दूसरे को पता नहीं उसने बर्गर मंगा लिया, तीसरे ने फोन किया मेरे लिए जरा कुकीडो लेकर आ जाओ, चौथे ने अपने रूम में फोन किया पता ही नहीं है वालिद साहब जो उनके लिए खाना लेकर आ रहे थे, छठे को पता नहीं है वालदा ने उनके लिए कुछ बना दिया, तो घर का निजाम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए। क्या कहते हैं तारिक भाई, ये मतलब एक एक्सपीरियंस है, हो सकता है मेरा भी एक्सपीरियंस गलत हो, आप क्या फरमाते हैं?
तो ये जो अभी लास्ट एग्जांपल ये से, तो पांच छह डिशेज सामने होंगी फिर क्या होगा? ये तो
नहीं, ये प्रैक्टिकली होता है बहुत सी जगह, कहीं मिले वाला है वो बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ, घर में गए बोले यार वो घर वालों ने बनाया हुआ था, यानी कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, सिस्टम तो प्रॉब्लम हुई। एक होना चाहिए लीड करने वाला,
जी ऐसी है, हेडेक होना चाहिए ताकि जो है इस तरह के मसाइल ना हो और इसराफ ना हो। और हमारे यहाँ मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा इस पर जो तवज्जो देने की हाजत है कि हम खानों के मामलात में चार चार पांच पांच डिशेज मंगवा लेते हैं बनवा लेते हैं और फिर हम इसराफ की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए कि हम जो है मियाना रवि से जो है काम लें। देखिए कुरान मजीद कुरान हमीद एक बड़ा प्यारा टॉपिक जो इबादुर्रहमान के हवाले से बयान किया, ये जो इबादुर्रहमान है जो रहमान के बंदे हैं जो रहमान के खास बंदे हैं उनकी जो एट्रीब्यूट्स बयान किए उनकी जो सिफात बयान की उनमें बड़ी प्यारी सिफत बयान की गई है सूरह फुरकान आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बड़ा प्यारा है। और ये जो है इससे हम बैलेंस समझ सकते हैं कि बंदे को कैसा बैलेंस रखना चाहिए। देखिए कुरान मजीद में इबादुर रहमान के बारे में क्या बयान फरमाया कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़तुरू वकान बैना ज़ालिका क़वामा। तर्जमा कंज़ुल इरफ़ान, और वो लोग के जब खर्च करते हैं तो ना हद से आगे बढ़ते हैं
बेशक
ना तंगी करते हैं, ना हद से आगे बढ़ते हैं ना तंगी करते हैं, और इन दोनों के दरमियान एतदाल से रहते हैं
बेशक।
तो काश हमें
कंजूसी भी नहीं करनी,
जी
बच्चों को भी खर्च नहीं करते,
जी जी कंजूसी भी नहीं करनी, तेजी भी नहीं करनी, ना हद से बढ़ना है। तो इन दोनों के दरमियान जो रहकर बंदा काम करे, वैसे भी मामलात में जो दरमियानी राह है जो मिडिल पाथ है ये जो है बेहतरीन रास्ता है, बेहतरीन तरीका है। तो हम हर मामले के अंदर जैसे अभी आपने शुरू में बात की थी ना इनकम के हवाले से, ओवर टाइम कर रहे हैं तो अब इनकम में भी जो है ये नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं। दरमियाना रवि के साथ आप इनकम करें आप कमाएं और दरमियाना रवि के साथ आप उसको एक्सपेंस करें तो ये बेहतरीन।
हमने ही नहीं कितना कमाना है, कितनी लिमिट नहीं रखी, हलाल कमाना है ये,
जी जी
ऐसे
हलाल कमाना है बिल्कुल।
वो कहते हैं आप इतना कमा रहे हो, भाई आप पहले मालूम तो करना चाहिए इतना कमा रहा आपको क्या है, लेकिन बात हो रही है उस कमाने में किसी के राइट्स तो नहीं वायलेट हो रहे
जी,
जो इस्लाम ने बयान किया ही होगा ना।
जो शख्स तलब हलाल कमाता है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था अल कासिबु हबीबुल्लाह
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह,
कि जो हलाल कमाने वाला शख्स है ये तो अल्लाह का महबूब बंदा है
सुभान अल्लाह, अल्लाह का महबूब।
तो अल्लाह ताला हम सबको हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, अंदाज सही अंदाज से खर्च करने की तौफीक अता
फरमाए माशाल्लाह। ये रिजवान भाई,
देयर इज अ कपल ऑफ पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू स्पीक ऑन। वन दैट शाह साहब मेंशन टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ हिज पॉइंट around weddings and lavish behavior that we have and customs and traditions in our cultures and other cultures as well, and it's really important that we try and differentiate between these customs and cultures and what Islam teaches us, and we're putting unnecessary pressure on ourselves by having some of these customs in place. For example, if a child's born and we're going to give him a bar to congratulate the family, we have to take flowers, chocolates, but then we have to take a certain amount of cash as well. Or if we give clothes, they have to be branded clothes, designer clothes. And it's like, if we don't do this, it's that saying again, what will people say? What will people say? We'll be ashamed in the community, in our customs, in our traditions. So we need to be really clear on what Islam is telling us and what is culture, what is custom. And I'm not saying all of custom and culture is bad. There's some of it that's good practice. But all of this that we're talking about, extravagancy and lavish lifestyle, this doesn't fall into that. We're saying, I like the point that Ustaz have just made, that Islam tells us not to be stingy, but also try and stay away from lavishness. And we keep coming back to this point of middle path, balanced lifestyle. And there's one point that I wanted to expand on, was there's no need to tell everybody how much you earn or how much money you have. This can land you into a lot of difficulties. One, it can come into showing off, ostentation. Second, it can be buri nazar, so you could get an evil eye. And third, you're putting yourself into difficulties. You're letting people know how much you have, how much you're earning. And so people's eyes go, why is he not spending this much? Well, he can afford to do this. Why is he not looking at this? If you're only spending this much on me, why aren't you spending this on me? So there should be a certain amount of parda. Not, you know, the people that need to know, obviously need to know in your household. But you don't need to go and tell every A, B and C how much you're earning.
Mashallah.
And this will also increase the barakat, inshallah.
MashaAllah. Acha, Munib bhai, ek nafsiyat hai insaan ki. Ki jaise ek to pehle desire hoti hai ki yaar paisa badh jaye, itna badh jaye, aawar badh jaye, paisa aa jaye. To thik. Acha, jaise hi aamadni badhti hai na, apne akhrajat increase kar dete hain. This is not the right way. आप प्रॉब्लम में थे, आपकी ये डिजायर थी कि आप 100 पाउंड बढ़ जाए तो ठीक हो जाएगा। 100 पाउंड जैसे ही बढ़े, आपने अपने एक्सपेंस 120 पाउंड बढ़ा दिए। भाई पहले भी तो आप जिंदगी गुजार रहे थे ना, आपको किसने बोला एवरी वीक आप होटल पे जाए? अब किसने बोला है? अगर आपकी जिंदगी में बजटिंग ही नहीं है, मतलब जिंदगी का कोई वो कैलकुलेशन नहीं है। देखिये, आप जिसको हम दावत इस्लामी की इस्तेलाह में कहते हैं फिक्र मदीना, अपनी अकाउंटेबिलिटी करना रोज आना के, तो उसी तरह जिंदगी के अंदर भी बगैर अकाउंटेबिलिटी के तो है ही नहीं। ये तो अकाउंटेबिलिटी, आप किसी भी फर्म में ले ले, आप कहीं भी काम करते हैं, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी है। चेक इन इनकम एंड एक्सपेंस असल में यही चीज है, घर के अंदर नहीं है चेक इन बैलेंस।
देयर सम पीपल दैट वुड बी वाचिंग दिस प्रोग्राम नाउ who will never have done an income and expenditure. So I think we should elaborate a little bit on what an income and expenditure is. I used to be in this field a long time ago when I was a student. And the customers, we used to talk to them and do an income and expenditure for them to say, look, can you actually afford what you're going for? And they used to say, this is our income, and then these are our expenses. So we spend this much amount on food, this much on clothes, this much on fuel, this much on going out and eating, this much on other luxuries. And when you got to the bottom of the list, they were in the minus. He said, look, you can't afford what you're doing now.
Yes.
How are you going to afford this product?
So, yeah.
And it opened up their eyes, because people don't do this at home. This isn't a general practice. And we need to encourage the viewers that, look, do this income and expenditure. This is what we call budgeting.
Check and balance.
Check and balance. We need to understand what we're earning so that we can understand what we can expend on, what we can save.
बस वो एक कार्ड है, सब दे दिया इशू करके, ये सेकंड या थर्ड महीने के बाद बिल आया, बैठे में क्या हुआ, दिया क्यों था? अब तो वो तो सही, मालूम तो करे किसको दिया हुआ। अब देखिए, असल में वही बात है, जरूरियात अलग से हटके, हर बच्चे के पास मोबाइल, ये जरूरत नहीं थी, ये सहूलियात में भी नहीं थी, ये लग्जरी में थी। यार आप 5 साल के बच्चे के लिए मोबाइल, देखो बच्चा वो अपना लेकर बैठा हुआ, उस बच्चे की जरूरत क्या है 5 साल की मोबाइल देना, ये एक्सपेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा? हर दूसरे के पास लैपटॉप होना चाहिए, आईपैड होना चाहिए, टैबलेट होना। पहले घर में शायद एक होता था मुश्किल से, अब घर में 5 लोग हैं तो छठा होता है यार, वो एक एक्स्ट्रा है, कोई आगे पीछे हो जाए। यानी इतनी प्रिकॉशन इख्तियार की, बंदा बीमार हो तो जाकर कबर खुदवा दी उसकी, बोला भाई दवाई देने जा रहा हूँ, तो बोला क्या हो, बस ऐलान करा दिया जी, वो बस गया। तो वो होता ना इतना दूर की सोच रहे होते बहुत सारे, अल्लाह रहम फरमा हमारे हाल
से। सर यू नो वंस यू आर गिवन डिवाइसेस ओवर, फॉर एग्जांपल दैट फ्रेंड सर्कल इन स्कूल, दे माइट हैव डिजाइनर क्लोथ्स, दे माइट हैव अ स्मार्टफोन or the latest phone, latest gadget, or even a cycle, etc. They'll go home, the children as well, they'll go home, they'll demand this from their parents. Or for example, if they are given, they begin an iPad, for example, or a phone, and they watch YouTube, there's vlogs there, etc. And then they see how people, or the rich individuals, they're spending their life. So then they'll go up to their parents and say, Mom, Dad, I want this as well. Now, what the child or the teenager etc. needs to understand that not everyone can afford a lavish lifestyle. This is what, first if we're talking about elders, but the youngsters that are listening as well, they need to understand not everyone can afford a lavish lifestyle. Your parent can maybe once in a year get you something which is, you know, what you want, but every single month you want something, or you see a gadget, a new phone come out. I know individuals that even though they've got the latest phone, they'll get the latest phone again when, as soon as that comes out. Then they get the next one as well. There's a person that he does not eat anything other than chicken in his household. The parents were telling me this, that this child of mine, he doesn't eat vegetables.
No,
I asked that. He doesn't eat anything other than chicken. Only thing that gets cooked for him in our house is chicken. Now, chicken is expensive as well now. So all this, when you calculate, says that it comes down to how a parent, a father, a mother should do tribute to their child. And not everything is about money. Sometimes love is better than money. So a lot of things that money can't buy, a lot of things. They need to, relationships, etc. So they need to realize, especially the youngsters that are listening as well, that once you see something in school, in your education field, whatever you're in, and don't think that your parents can do this as well. But rather have patience. How you can request your parent, but don't throw a tantrum that, and you start crying, etc. That if your parents don't get you this, then you go on, you know, they say a mad one as well. But don't do this. Remain calm. Remain humble. Request your parent that, father, mother, I want this, but if it's okay after a certain time, then of course they'll adjust as well. Which parent does not want good for their child? Which parent doesn't want to give the world to the child? Every parent does, yeah. But they have to think as well of your child's future, so they're restricted, so they can't.
मतलब मैं एक चीज गौर करता हूँ, जहाज है तो इनकी बात कंटिन्यू करते हैं, आपकी बात सही, आप बिल्कुल बताइए, जहाज है ना, आगे वाली सीट जो है वो है 3,000 pound की बिजनेस क्लास, पीछे वाली 500 pound की, सही है, 2,500 pound का डिफरेंस है। अब इसको लगा ले 5 trip एक्स्ट्रा बन सकते हैं, आगे वाला भी बैठा और ये भी बैठा, मैं भी बैठा 500 वाले में, आगे वाला बैठा 3,000 में, एक ही टाइम पे जहाज में उड़ना है, एक ही टाइम पे लैंड करना है, ना उसने पहले पहुंचना है ना मैंने बाद में पहुंचना है, ना उसकी सीट अलग जानी है ना मेरी सीट अलग जानी है। ये क्या है असल में, ये हदीस है और दिखावा। अगर यही पैसे हम किसी गरीब की मदद के लिए आ जाते तो हमें दुआएं नहीं मिलती, हमें बरकत नहीं मिलती। घड़ी है ना 20 pound की भी पहनते ही नहीं हो, 20 pound की भी घड़ी हो सकती है और 2,000 pound की भी पहनने वाले पहनते, अल्लाह ने दिया है, हम नहीं मना कर रहे, अल्लाह और दे भाई बरकत दे। वो मसला ये है कि जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात आए तो प्रॉब्लम आती है। तो बात असल में ये है कि आपने अपने आप को इस तरह क्यों कर दिया दिखाने के लिए। नॉर्मल लाइफ लेकर आ जाए, सुकून की लाइफ में लेकर आ जाए। वही बात है, पेट इतना सा है लेकिन हविस इतनी है कि सर हविस बादशाहों की भी पूरी नहीं होती है, जरूरियात फकीरों की भी पूरी हो जाए, हर एक की जरूरत पूरी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। हाँ, आपने अपनी जरूरतों का मेयार कितना बड़ा रखा हुआ ये मैटर करता
है। I want to make a point on the point that you've made. It's very harmful for a parent to always say yes to the child. Extremely harmful for their future, because they will not be used to hearing no. And when they hear no, and no doubt they will hear no from either their employers or maybe their husband or wife, at some point or not, they will hear no. And they will, when they're adults, they won't just go on a mad one, as you put it. It will be a lot worse for them. and it can cause relationship breakdowns, people quitting jobs, and communities breaking up. So it's very important that even if you can give it to the child, sometimes we should practice saying no, so that they get into this habit of understanding what no is, not always getting what they want. Or perhaps say, look, I will give it to you at a later point when we can afford it, or when you've done this, or set them some targets.
Yes. You say, sir, income and expenses, it's a very vast topic, but if it can be summarized into a couple of sentences, is that, what we said at the start, we need to search for what our needs are. I think everyone knows what their needs are. It's just to differentiate between the luxuries and the facilities, the lavish lifestyle. And say, sir, Allah Tabaraka wa Ta'ala themselves has told us that not to waste our wealth. And so therefore we should act upon what Allah Tabaraka wa Ta'ala has mentioned in the narration, say, sir, that Allah Tabaraka wa Ta'ala does not like for you to waste wealth, nor ask many unnecessary questions, nor spread and gossip. So Allah Tabaraka wa Ta'ala does not like for you to waste wealth. Says that one of the worst ways is mentioned that a person can reach his facility or reach his luxury is by taking credit from somewhere. A loan, for example. Now that, it's a short-term facility, you can say. For short-term, okay, you've got what you wanted. Now for a long-term, you're not just paying back the exact amount, you're paying back more. See? Now this is one thing that a person, you already loaned budget. Okay, you got 10,000, 20,000 from somewhere, but as a credit, as a loan, but you got what you wanted, you got a car that you wanted, you got whatever you wanted, but now what? Now you're back in the same predicament. You got 20,000 from somewhere, you bought a car for £20,000, now you're back to square one. It's not like that £20,000 helped you in somewhere. Only thing you added to your own budget list, so-called budget list, is an extra expenditure. Car, fuel, maintenance, or whatever is needed with that. So that these are unnecessary things that we add. I think that once we realize this in our lives, that how much or how many things we have added to our lifestyle or to our daily errands that we run as well, or daily things, and we cut them short. What I would recommend is sit down once with the family members, pinpoint this is a need, this is a need. Okay, this is what you call a facility that we might have once a week or once a month. And this, inshallah, once you do this, we have set plan and set schedule as well. And inshallah, your income will be fine as well. And your budget will be fine and your savings will be fine. Many individuals mentioned one more point as well, sir. Many individuals have mentioned that to run a family, especially during the current climate, how the society is at this moment in time, the cost of living, that from whatever you earn, set a fixed amount that you put into savings. Now, start saving up. Anything can happen in the future. You might need the extra money. And at that time, you're going to door-to-door. Rather, it's better than, you have the savings yourself. So start a saving thing or give it to an elder at home or a mother in particular. For example, let's say you earn £400, £500 a week. From there, £100 or £50. Mom, can you please save this for me? That's there. You won't touch it until you actually need it. That way, you could ensure that if you do later down the line need money, or your children need money, they have access to money. What happens generally, the father, you spend a lavish lifestyle, the father's passed away, and the kids are just looking there, there's nothing for us. He's done all of this, bankrupt, gone, finished. Now that's where are we to turn to? So hence, look towards the future, and inshallah, once you start doing this, inshallah, better income and expenses will happen as well.
Yes, Tariq bhai. بب اس کے بارے میں صوفیہ نے بڑی پیاری بات بتائی ہیں ذکر کی، چند کے میں سے ذکر کرتا ہوں. فرمایا کہ یہ جو اسراف کرنا ہے، جو زیادہ خرچ کرنا، فرمایا انہو سریقن الغفلہ، یہ غفلت کا ایک راستہ ہے. اور فرمایا فالمصرف غافلا عن اوامر ربه ونواہیہ، کہ یہ اپنے رب، یہ جو اسراف کرنے والا شخص ہوتا ہے، یہ اپنے رب کے احکامات اور اس کی نواہی، یعنی جو چیزیں منع کی گئی ہیں، ان سے غفلت ہو جاتی، غافل ہو جاتا ہے. غارق فی شہواتہ و ملذاتہ، یہ اپنی پسند کے اندر غرق ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ فکم من عزیز ذلہ، اس اسراف کی وجہ سے کتنی عزت والے ہیں، کم من عزیز، کتنی عزت والے ہیں، ذلہ، وہ ذلیل ہو گئے. اور فرمایا وکم من غنی استقرا، اور کتنے غنی، بڑے امیر لوگ، استقرا، وہ فقیر بن گئے. اور بڑی پیاری بات، یہ بڑے پیارے جملے ہیں، فرمایا الاسراف داء قتال، اسراف ایک ایسی بیماری ہے جو کہ قتل کرنے والی ہے. یہ سچ اے ڈیزیز وچ کلز. یم بھی تو اخلاقا سیئا, یہ اسراف وہ ہے جو کہ برے اخلاق کو پیدا کرتا ہے. وہ یہ دینی بیوت نہ میرا, اور جو بڑے بڑے بلڈ ہوئے گھر ہوتے ہیں ان کو یہ منہدم کر دیتا ہے, ان کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. الجبن و ظلم من آثارہ, کہ جبن کمزوری اور ظلم کرنا اس کے آثار میں سے ہے. فرمایا کہ وقلت الامانہ من نتائجہ, اور جو شخص اسراف کرتے ہیں نا وہ امانت میں بھی کمی کرتا ہے, یعنی کوئی اس کے اوپر امانت رکھوا دے اس کو بھی خرچ کر دیتا ہے, اسراف میں لیا دیتا ہے. اور فرمایا کہ ول انساک عن البذل فی وجوہ الخیر من صنائع, اللہ کا بہت بڑا نقصان کہ جو اسراف کرتا ہے. آخر میں ذکر کیا ہے کہ جو اسراف کرتا ہے وہ شخص خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا.
اللہ اللہ,
یہ اس کے چند میں سماعت
سکتا. اللہ بہت پیارے آپ نے مدنی پھول دی, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی رضوان بھائی کیا کہیں گے آخر میں؟
وی آل آر ویٹنسنگ دی کرنٹ ٹائمز and the cost of living going up, and you know it's in front of everybody knows about it. So I wanted to just go over a few basic tips that I think would be useful to reduce our expenses. So one of them is to, when we go shopping, try and make a list of what shopping we need, and going back to what Shah Sahib was saying, needs and wants, we need to differentiate between them, what we actually need and what we want. First, prioritize your needs. Make a list and try and stick to it. Have a look at where you're going to shop. Give this zimmedari, this responsibility, to someone who's good at shopping, who can find offers, who can see where it's appropriate to buy something which is slightly more in bulk. For example, those things that don't go off, like washing powder, it might be better to buy bigger items and you'll get them on offer rather than smaller items. Go into convenience stores and corner shops. They're very expensive.
Wholesale.
They're there for convenience. If you shop around in markets, look for offers, you'll get better prices. Similarly, on bigger items in the house, for example, your electricity supply, your gas supply, your water supply, your mobile phone supply, broadband, all of these things, regularly check when your annual contracts are up to see what the best price is. Because the product's still the same. If you stay with the same supplier, the price goes up and up. But normally, when you choose a new supplier, you can get introductory offers.
MashaAllah. Rizwan bhai ne bahut sare madni phool diye. End mein main yahi kahunga ke income and expense. Ho sakta hai income kisi ki weekly basis pe aur monthly basis pe ho. Expense aapke daily basis pe hote. Ab aapko daily basis ka bhi budget banana hai. ویکلی بیسس کا بھی بجٹ بنانا ہے, منتھلی بیسس کا بھی بنانا ہے, اور آپ کو ایئرلی بیسس کا بھی بجٹ بنانا ہے کہ آپ کے ایکسپنس کہاں کہاں ہوتا ہے. یہ سارا کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لائف پیسفل ہو جائے. تو اب اس میں گھر والے بیٹھے ایک دفعہ سکون سے, سب کو موقع دیں. وہ جیسے انہوں نے رضوان بھائی نے کہا کہ جو اچھی بائنگ کر سکتا ہے اس کو اچھی بائنگ دیں, جو سرچ کر سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے آپ سرچ کر کے لے کر آئے. سب کو ذمہ داریاں بانٹے اور سب کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ میری انکم ہے بیٹا, اس حساب سے ایکسپنس کرنا. اب بہت سو کو پتہ ہی نہیں میرے والد کی انکم کیا ہے, گھر والوں کو وائف کو پتہ ہی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے جی وہ اپنی مرضی سے کر رہی. کبھی آپ بیٹھ کر سمجھائیں اس کو. اب آپ اس سے چھپا رہے ہوتے, وہ اپنے پاس سے کر رہی ہوتے, معاملہ تو خراب ہوگا. ٹرانسپورٹیشن پہ کتنا ہے, ڈیزل پیٹرول کتنا خرچ ہو رہا ہے, گیس الیکٹریسٹی جیسے انہوں نے بات کی ہے, پھر جو ایجوکیشن ہے اس پر کتنا خرچ ہو رہا ہے, آنے جانا. اب گھر کے قریب ہے پھر گاڑی نکالیں گے, پھر پارکنگ ڈھونڈنے میں 5 منٹ لگا دیا آپ نے, پیٹرول لگا کے جا کر اتنی دیر میں دودھ پیدل لے کر آیا تھے لیکن یہ گاڑی میں جانا ہے. اب یہ ساری چیزیں کیا ہے, ٹائم بھی ویسٹ کر رہی ہے, پیٹرول بھی ضائع کر رہی ہے. جو چیز پیدل, وہ کہتے ہیں نا کہ ہیلتھ جو ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے لیے, یہ یاد رکھیے گا. ہیلتھ از ویلتھ. اب ہیلتھ ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا, ویلتھ ضائع ہو رہی ہے اس کے اوپر. اچھا ویلتھ جو ہیلتھ ہے آپ کی وہ کیسے بنتی ہے, وہ سادہ غذاؤں سے بنتی ہے, یہ بڑی بڑی چیزوں سے نہیں بڑھتی ہے. سادہ اور اچھی غذا کھائیں, انشاءاللہ صحت بھی بنے گی. سادگی اپنائیں, سادگی کی طرف آئیں. شادی کسی اور کے گھر میں ہو رہی ہے, میرے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں. آپ وہ مہندی کے لیے بھی لینا ہے تو مائیوں کے لیے بھی لینا ہے, تو شادی کے لیے بھی لینا ہے, تو ولیمے کے لیے بھی لینا ہے, اس کے بعد وہ کوئی منہ دکھائی کی رسم ہے, تو کوئی جوتا چھپائی کی رسم ہے, تو کوئی وہ بھائی کہاں سے یہ اسلام میں. اب ہر ایک کے لیے جوتے بھی لینے, کپڑے بھی لینے ہیں, اب آگے آپ کیا کیا لیں گے. ان کے گھر شادی ہے, میرے گھر میں پرابلم ہے, میرا دیوالیاں نکل گیا. تو دس از بجٹنگ کو ہمارے خراب کر دیتا ہے. ہمارے انکم تو لمیٹڈ ہے, ایکسپنس خامہ خواہ بڑھ گئے. میں شادی ہے, کپڑے موجود ہیں, ہم چھوٹے وہی تھے اسکول کے جوتے تھے پہن کے چلے جاتے تھے, نہیں اب شادی کے الگ پہنیں گے, ولیمے کے الگ لیں گے. اب بھلے اوور ٹائم کرنا پڑے, ٹیکسی کرنی پڑے, کام اچھا خاصا کر رہے ہوں گے, پارٹ ٹائم ٹیکسی کرنے لگے, کس لیے, یا ضروریات بڑھا لی آپ نے.
आप नीचे से आएंगे लाइट जलाते ऊपर चले गए, नीचे की कौन बंद करेगा? अब फिक्र ही नहीं है, बाद में वो नीचे की लाइट जल रही थी, अगर आपने फिक्र ही नहीं किया, हजरत बिल आ गया आपके पास, अब चेक तो करें कहाँ का यूज करके पैकेज खत्म कर दिए थे आपने, ये सारी चीजें आपके सामने, आप महीने के बाद रोने का फायदा क्या है? आप अकाउंटेबिलिटी करें अपनी घर वालों के साथ, कहाँ खर्च किया था और उसको थोड़ा सा चेक इन बैलेंस में ले आए। लाइफ को चाहे वो दुनिया और आखिरत सबके मामले में अकाउंटेबिलिटी आपको कामयाब करेगी। अकाउंटेबिलिटी होगी तो आप प्लानिंग कर सकते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, वरना जिंदगी जो है वो इसी तरीके से गुजर जाएगी, आप जितना कमा रहे होंगे निकल रहा होगा। एक छोटी सी मोटी सी कैलकुलेशन दे दूं, जो सिगरेट पीते हैं, पहले भी हमने दी थी, फॉर एग्जांपल मिनिमम 20 पाउंड, ये मिनिमम कह रहा हो, जो जॉबलेस है ना वो कहता है 20 पाउंड की पीता हूं जॉबलेस ही कह रहा है। मैंने कहा आज के दौर में अमीरी और गरीबी जो है ना वो ख्वाहिशात की रह गई है। हमारे जमाने में जो गरीब होता था उसके पाँव में चप्पल नहीं होती थी, आज के दौर में जो गरीब है 1000 पाउंड का मोबाइल है और सारी चीजें उसकी जरूरत पूरी है और फिर भी गरीब है, तो बात तो ख्वाहिशात की है। 20 पाउंड अगर आप ले लें सिगरेट पीने के ऊपर, जो ना जरूरत में है ना सहूलत में है ना आपके किसी भी चीज में, ये आपकी सेहत भी खराब कर रहा है, उससे पैसे अलग जाया हो रहे हैं। 20 पाउंड अ डे महीने के 30 डे में 600 पाउंड बन गए, साल में ये कितना बन गया हजरत, अगर आप गौर करें 7200 पाउंड सिर्फ सिगरेट मिनिमम, जो जॉबलेस है। अच्छा, जो जॉब करता है थोड़ा उसका स्टेटस है, वो 30-40 पाउंड उड़ाई देता है, वो चाय भी बाहर पिएगा और सिगरेट भी करेगा। अब अगर आप 10 ईयर्स का एक एक्सपीरियंस या 20 ईयर्स का लगाए, मैं मिनिमम कहता हूँ, चेन स्मोकर है, 30-40 ईयर्स से सिगरेट पीने वाले मैं जानता हूं, अगर मैं कहूं 20 ईयर्स का ही अगर आप ये बजट अपना देखते हैं, जो आपने 20 पाउंड उड़ाए हैं, अगर आप अपनी वालदा को अल्लाह के रास्ते में देते तो और बरकत मिलती, ये एक अलग ही टॉपिक हो जाता, तो अल्लाह के रास्ते में तो दिया ही नहीं जा रहा, बाकी चीजों में उड़ा है। अब अगर सिर्फ सिगरेट की कैलकुलेशन ले लें 20 पाउंड अ डे और 20 ईयर से आप सिगरेट पी रहे हैं, 144,000 पाउंड बनता है, और कभी कभी दोस्तों को भी पिलाई होगी, 40-50 पाउंड भी गया होगा, 150,000 पाउंड आपने ऐसे उड़ा दिया, ना आपका फायदा ना घर वालों का। आपके घर वाले बच्चे अच्छी लग्जरी लाइफ गुजार सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आज बच्चा कहता ये चाहिए तो आप उसको डांटते हो, शर्म नहीं आती, इतना सा कमा तो खामा, और आपकी सिगरेट चल रही होगी, आपके दोस्तों के साथ होटल जरूर चल रहा होगा, हर सैटरडे को आपने होटल में जाके खाना खाना है, घर वाले सोचते हैं कि यार घर में बोले राशन लाने का तो टेंशन में आ जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाने के लिए पैसे। दिस इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंस बजट। जब तक बजट नहीं है आपकी जिंदगी में, जो फालतू चीजें उनको निकाले, जो काम की चीजें वो लेकर आए, सिगरेट पीते हैं, घर वालों बच्चों की भी सेहत खराब करते हैं, अपनी सेहत का भी बुराल करते हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगियों से खुशियों को छीन लेते हैं। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए हमारी बात, अपनी जिंदगी में मियाना रवि लेकर आए, एक बैलेंस लाइफ को लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक जुमले में कोई बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर दें। यस,
no matter what the income is, low or high, how much we plan on savings, without blessings and barakat, there's nothing. And there's a few simple things we can do to increase these blessings.
Bishop.
And I wanted to quickly just mention them. Number one, washing our hands before and after eating. Bishop. Just blessings and sustenance.
Subhanallah.
Number two, when entering the home, saying salam and reciting surah al-ikhlas upon entering the home, it brings blessings and sustenance. Offering salah in jamaat brings blessing and sustenance. Eating food by reciting bismillah brings blessings and sustenance. These are really simple actions that can give you blessings and barakah in your sustenance.
MashaAllah. Ghar mein dakhil hoon, bismillah padhe, kul huwa Allahu ahad padhe, mere aqa alayhi salatu salam par salam bheje, inshaAllah ghar mein barakat bhi aayegi. Haath dhokar khana khaye, khane ke baad bhi haath dho, isse bhi barakat aayegi. Aur halal mein barakat hai. हलाल की तरफ जाएं। अल्लाह हम सब के घरों में सुकून और बरकत अता फरमाए। कीप वॉचिंग मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।